أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ جرمنی کی مجلس خدام سالانہ اجتماع شروع ہو رہا ہے اور اس اجتماع میں بعض ایسی نصیحتیں میں کرنی چاہتا ہوں جن کا درحقیقت تو کل عالم کی جماعتوں سے تعلق ہے لیکن اس اجتماع کے حوالے سے وقت ایسا آج آ رہا ہے جس کے نتیجے میں مجھے بہرحال یہ اعلان کرنا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر یہ اعلان ہو تو بہتر ہے. اس اعلان کا تعلق توحید باری تعالیٰ سے ہے اور توحید کے دو مظاہر ہیں جو اس وقت میرے پیش نظر ہیں. ان دونوں حوالوں سے میں آج کے خطبے میں جماعت کو چند نصیحتیں کروں گا. پہلے تو ان آیات کا یا اس ایک آیت کا جو بڑی آیت ہے اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اس لیے معلوم ہوتا ہے ایک سے زیادہ آیات ہیں. مگر سورہ اعراف کی 159 آیت ہے یہ. اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہے, یہ اعلان عام کر دے, قل کہہ دے, یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے بنی نوع انسان میں تم سب کی طرف تمام تر کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, اس خدا کا رسول, اس اللہ کا رسول جو اس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت, اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں, وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی, بس اس پر ایمان لے آؤ, اس اللہ پر ایمان لے آؤ, و رسول ہی اور اس کے رسول پر جو النبی الامی ہے, ایسا نبی ہے جس کو دنیا میں کسی نے دین اور سیادت کے معاملات نہیں پڑھائے. تمام دنیا کو تعلیم دینے کے لیے اللہ نے ایک ایسے انسان کو منتخب فرمایا ہے جس نے دنیا سے کچھ نہیں سیکھا. یومن باللہ و کلمات ہی, وہ صرف اللہ پر ایمان لاتا, اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ توحید باری تعالیٰ کا اعلان ہے جو عالمی اعلان ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے تمام دنیا پر چھاتی ہے اور سب دنیا کو ایک ہاتھ جمع کرتی ہے. یہ وہ اعلان ہے جس کی روشنی میں آج کے مضمون کو آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلے تو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج تمام دنیا میں توحید سے بڑھ کر اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک توحید ہے جو تمام عالم کے اختلافات کو مٹا سکتی ہے. ایک توحید ہی ہے جو تمام عالم کے رنگ و نسل اور قوموں اور جغرافیاؤں کے اختلافات کو دور کر سکتی ہے. اس کے سوا اور کوئی نظریہ نہیں جو انسان کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا کرے. توحید کو آپ عالمی مسائل سے الگ کر لیں تو تمام قومیں اپنے اپنے دائرے میں بکھر جائیں گی. ہر رنگ الگ الگ اور جدا جدا ہو جائے گا. ہر زبان تفریق کے لیے استعمال ہوگی, اور ہر قوم کا اپنا ایک تشخص ہوگا جو اپنے تشخص کے گرد گھومے گی اور اپنے تشخص کی ہی وفا کرے گی. تمام عالم کے ایک ہاتھ پر جمع ہونے کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے جب تک اس عالمی توحید کا اعلان نہ کیا جائے جس کا اس آیت کریمہ میں اعلان فرمایا گیا ہے. اور اسی توحید کے ذریعے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہے کہ سارے عالم میں اعلان کرو کہ میرے ہاتھ پر اب تمہیں اکٹھا کیا جانا ہے. تمام عالم میں سے مجھے منتخب فرمایا گیا ہے کہ میں دنیا کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کروں, اور ایک ایسے شخص کو منتخب فرمایا گیا ہے جس پر مقامی تعلیمات کا کوئی بھی اثر نہیں. یہاں لفظ امی خاص طور پر اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ملک اور کسی قوم کی تعلیمات سے ہرگز متاثر نہیں تھے. اور اگر آپ کسی ایک قوم کی گود میں پرورش پانے والے اس رنگ میں ہوتے کہ اس قوم کے اعلیٰ تصورات یا اخلاق یا ان کے شخصی تشخص تابع ہو کر آپ نے بچپن گزارا ہوتا تو آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ آپ کل عالم کو ایک نبی کے طور پر مخاطب فرماتے. بس اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ شروع ہی سے آپ کو بغیر تعلیم کے چھوڑا, یہاں تک کہ الف بے لکھنا بھی آپ کو نہیں آتا تھا. اور اس پہلو سے جو بھی تعلیم دی خود دی, اور جب خود تعلیم دی تو سارے عالم کو مخاطب کر کے یہ اعلان فرمایا کہ میں وہ امی شخص ہوں جس کو دنیا کی کسی قوم نے تعلیم دی, اور میں تم سب قوموں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. اس میں ایک اور خوشخبری کا پیغام بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی اکثر قومیں امی ہیں. مغرب کی قومیں غالباً یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ دنیا کی بھاری تعداد ایسی ہے جس کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا. افریقہ کی آبادی ہے بہت بھاری جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. ہندوستان کی بہت بھاری آبادی ہے جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. پاکستان کی بہت بھاری آبادی ہے, اسی طرح جزائر کے رہنے والے ہیں, کسی کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا. اور ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی بہت بڑے عالم کو رسول بنا کے بھیجتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ اسے تو علم کی فضیلت حاصل ہے, یہ وہ باتیں کرتا ہے جو ایک عالم वो जेब देती हैं, हम जाहिलों का क्या काम कि इसके पीछे चल सके, हमें तौफीक क्या है कि हम एक बड़े आलिम की पैरवी कर सकें। बस अल्लाह ताला ने इंसान के बुनियादी मकाम से मोहम्मद रसूलुल्लाह को उठाया है, जो इंसानियत के तकाजों के लिहाज से सब में बराबर है और तालीम के लिहाज से भी उनमें से कम के साथ है। जो निचला से निचला दर्जा इंसान का तालीम के लिहाज से हो सकता है वो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल था। तो जिस पहलू से दुनिया की कोई कौम और दुनिया का कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि तू हमारे लिए नहीं हो, तू हमसे ऊंचे आदमियों के लिए हो। और सबसे नीचे से सफ़र शुरू फरमाया और सबसे ऊपर तक पहुंचे, ये वो कमाल है हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह का, जिसने आपको कुल आलम का नबी बनाने में एक फौकियत अता फरमाई है। वो फौकियत क्या है मैं उसके मुतल्लिक चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बनी नौ इंसान पर एक ही फौकियत है और वही फौकियत आपकी कदर मुश्तरक है। अल्लाह ताला की सिफात में रंगीन होना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि उम्मी थे इसलिए किसी कौम की सिफात ने आप पर असर ना फरमा किया, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत रखते थे और अल्लाह आपसे मोहब्बत रखता था, इसलिए आपने अल्लाह के रंग सीखे और अल्लाह ने अपने रंग आपको सिखाए। और यही वो मरकजी नुक्ता है जिसे याद रखना आलमी वहदत पैदा करने के लिए जरूरी है। खुदा ताला की सिफात ही हैं जो दर हकीकत अल्लाह को उसकी मखलूक से बांधती हैं, और इन सिफात का रिश्ता ना हो तो कोई और रिश्ता इंसान को दूसरे इंसान के साथ इकट्ठा नहीं कर सकता। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी होने के बावजूद जो गैर मामूली फौकियत अता हुई वो ये थी कि आपने अल्लाह की सिफात सीखी और अल्लाह की सिफात का रंग अपने आप को पहनाया, और उस रंग के नतीजे में आप ऐसे वजूद के तौर पर उभरे जैसे खुदा अपनी मखलूक से है। अल्लाह को अपनी हर मखलूक से ताल्लुक है और मखलूक में से कोई नहीं जो ये कह सके कि ऐ खुदा तू तो बहुत बुलंद है, बहुत मर्तबों वाला है, बहुत अजीम शान है, हमारा तुझसे क्या जोड़ है। नामुमकिन है कि अदना से अदना मखलूक भी अल्लाह ताला से ये सवाल कर सके कि हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं, हम तो जलील और हकीर मखलूक हैं। क्योंकि अल्लाह ताला का जवाब यह होगा कि हो और मेरी किसी न किसी सिफ्त से तुम पैदा हुई हो, अगर मेरी सिफ्त जलवागरी ना करती तो कुछ भी वजूद में ना आता। बस अल्लाह ताला का तमाम बनी नौ इंसान ही से नहीं, कायनात की हर मखलूक से एक ऐसा ताल्लुक है, उस मखलूक के लिए शऊर का होना भी जरूरी नहीं। मादे की हर किस्म खबर जब तक खुदा की किसी सिफत का मजर ना हो उसमें सिफात पैदा ही नहीं हो सकती, और सिफात का ना होना अदम का नाम है। पर सबसे अहम नुक्ता तौहीद बारी ताला के मामले में यह समझना जरूरी है कि तौहीद के सिवा कोई भी ऐसी चीज नहीं जो इन कायनात को एक दूसरे से बांध सके, जो जिंदगी को एक दूसरे के साथ बांध सके और फिर इंसानों को एक हाथ पर इकट्ठा कर सके। खुदा ताला को छोड़कर हर चीज अलग अलग है, हर जर्रा अलग अलग है, उसमें कोई भी यकसानियत का पाया जाना मुमकिन नहीं रहता। इसी मंजर को अल्लाह ताला साइंसी दुनिया में एक ऐसे मंजर के तौर पर पेश फरमाता है जिसे साइंसदान आखिरी इकाई कहते हैं और जिसे वजूद के उफक के पल्ली तरफ बताया जाता है। साइंसदानों के नजदीक उस वहदत का नाम सिंगुलरिटी है और वजूद के उफक पर जिसके बाद हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि उस वहदत को क्या हुआ, उसने क्या शक्लें अख्तियार की, उसे वो इवेंट होराइजन के नाम देते हैं। यानी साइंसदानों के नजदीक एक इवेंट होराइजन है जिसके बाद तमाम मादा अपनी तमाम तर सिफात के साथ एक ऐसी वहदत में तकसीम हो, वहदत में डूब जाता है जिस वहदत की बाहर वालों को कोई भी खबर नहीं। हिसाबदान हैं जो हिसाब लगाते फिरते हैं और उनमें भी बड़े अख्तलाफात हैं। बाज़ हिसाबदान उस वहदत का एक तसव्वुर रखते हैं, बाज़ हिसाबदान उसी तरह बहुत बड़े बड़े दुनिया के उलमा एक वहदत का दूसरा तसव्वुर रखते हैं, मगर फिल हकीकत कोई नहीं है जो इवेंट होराइजन से पहली तरफ उतर सके, जो उस उफक पर जो वजूद का उफक है उस पर निगाह डालकर उससे पार देख सकता, और पार वो सिंगुलरिटी है यानी तौहीद। पर साइंसदान अपनी जुबान में भी एक तौहीदी का इकरार कर रहे हैं और उस तौहीद के इकरार के बगैर वजूद ही मुमकिन नहीं। वो कहते हैं ये तौहीद सिंगुलरिटी जब भी उभरेगी सिफात की सूरत में उभरेगी, और जब डूबेगी तो हमारे नुक्ता निगाह से सिफात हमारी नजर से गायब हो जाएंगी, और इसी का नाम अदम है। तो सारी कायनात में अगर अदम है तो खुदा तआला की तरफ लौट जाने का नाम अदम है, और चूंकि ये अदम निस्पति है एक ऐसे वजूद की तरफ लौट जाने का नाम है जो खालिक है, उसी से फिर ये अदम दोबारा तखलीक की शक्लें अख्तियार करता है। तो तौहीद आलम और तौहीद बारी ताला ये एक ही चीज के दो नाम बन जाते हैं। मगर जो बात मैं आपको समझा रहा हूं वो सिर्फ इतनी है कि सिफात ही का नाम जिंदगी या वजूद है। सिफात बारी ताला को निकाल दें तो कोई वजूद बाकी नहीं रहता। इस पहलू से अल्लाह ताला की दो तरह की सिफात हैं, एक वो सिफात जो किसी खास मखलूक से एक ताल्लुक रखती हैं, कुछ वो सिफात जो ज्यादातर मखलूक से ताल्लुक रखती हैं, कुछ वो सिफात जो सिर्फ इंसान से ताल्लुक रखती हैं, और फिर वो सिफात जो सिर्फ खुदा ताला से ताल्लुक रखती हैं। जहां तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है, आपने तौहीद के ये सारे मनाज़िर बने इंसान के सामने खोल दिए, और इस पहलू से कुरान करीम खुद एक बेमिसल किताब है, इसकी कोई और मिसाल दुनिया की इलाही कुतुब में दिखाई नहीं देती। इन सिफात बारी ताला को कुरान करीम इसी तरह दर्जा पर दर्जा पेश फरमाता है, वो सिफात जिनका मखलूक से ताल्लुक है और हर मखलूक से ताल्लुक है, उसके बगैर मखलूक है ही कोई नहीं। अब यह बहुत तफसीली मज़मून है जिसकी बहस की तफसील से गुंजाइश नहीं है, मगर इतना आप याद रखें कि कोई भी चीज उठा के देख लें, मादी चीज हो, मामूली से मामूली हो, मिट्टी उसको कह दें, मगर मिट्टी की भी कुछ सिफात हैं और वो सिफात हर दूसरी मखलूक में मौजूद नहीं है, कुछ मिट्टी की हैं कुछ दूसरी मखलूकात की हैं। एक लोहा देख लीजिए, लोहे की अपनी एक कुछ सिफात हैं, अगर उन सिफात को लोहे से जुदा करें तो लोहा खत्म है, उसका कोई वजूद बाकी नहीं रहता। तो मिट्टी उठा लें, पानी देख लें, दुनिया की कोई मादी चीज जो जिस तक रोजमर्रा आपकी रसाई है उसको पकड़कर उस पर गौर करके देखें तो आप हैरान होंगे ये देखकर कि वो वजूद सिर्फ सिफात से ताल्लुक रखता है। सिफात को मिटा दो वजूद गायब, और सिफात के मिटने का नाम ही अदम है, लेकिन अदम हमेशा खुदा की जात में खत्म होता है, अलग अपनी जात में नहीं मिटता। इसका नाम सिंगुलरिटी है। यानी साइंसदान जिसको वहदानियत कहते हैं वो ये मुराद है उनकी कि कोई अदम ऐसा नहीं जो हकीकतन कल अदम हो जाए। जहां तक बैरूनी सोचों का ताल्लुक है, जहां तक बैरूनी आंखों का ताल्लुक है, बैरूनी कानों का ताल्लुक है, हवास खमसा का ताल्लुक है, कोई चीज ऐसी है जो अदम हो चुकी है, हमें कुछ इल्म नहीं, मगर उस अदम के अंदर उसकी सिफात गर्क हो जाने में एक ऐसी ताकत मौजूद है जो फिर उसे उछाल कर वजूद बख्श सकती है। और यही सिंगुलैरिटी है जो सारी कायनात पर हावी है, इसमें कोई भी इस्तिस्ना नहीं है। बस आज के जमाने में जब लोग ये बातें करते हैं कि दुनिया को कैसे इकट्ठा किया जाएगा, दुनिया तो मुख्तलिफ शक्लों में बटी हुई है, चीनियों की और शक्ल, जापानियों की और शक्ल, जर्मनों की और शक्ल, अंग्रेजों की इनसे कुछ मुख्तलिफ, और फिर अफ्रीकनों की शक्लें हैं, अपने अपने मुल्क अपने अपनी कौम से ताल्लुक रखने वाली शक्लें, अलग अलग शक्लें, और अरबों की एक शक्ल है, यहूदियों की एक शक्ल है, फिर उनकी जुबानें अलग अलग हैं, फिर उनकी तहजीबें अलग अलग हैं, इन सबको कैसे एक हाथ पर इकट्ठा किया जाएगा। वो ये बात भूल जाते हैं कि तौहीद तो सारी कायनात को इकट्ठा करती है, इंसानों की क्या हैसियत है, इंसानों के वजूद की अपनी अलग तौहीद से अलावा कोई भी हैसियत नहीं। बस आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम कि मैं तुम सबके लिए रसूल बनाया गया हूं, इस पैगाम से इस मुतालक है, उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें अल्लाह जिसमें फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा युही व युमीत, उसके सिवा माबूद कोई नहीं है। अगर उसके सिवा माबूद कोई नहीं है तो तुम सबको इकट्ठा करने का उसका हक है, और एक ऐसे शख्स के जरिए इकट्ठा किया जा सकता है जिसमें उसकी वो सिफात मुश्तमे हो जाएं जो बनी नौ इंसान की सिफात है, यानी अल्लाह ताला की वो सिफात जो बनी नौ इंसान से ताल्लुक रखती है, अगर एक वजूद में इकट्ठी हो जाएं तो सिर्फ उसका काम है, उसी का काम है कि तमाम बनी नौ इंसान को अपने लिए अपनी तरफ इकट्ठा करें, और तमाम बनी नौ इंसान को इकट्ठा करके अल्लाह के हजूर पेश कर दे, क्योंकि बिल आखिर वही मालिक है। ये आवाज रोने की आ रही है किसी बच्चे की, इसको यहां से बाहर ले जाना चाहिए। हुआ युही व युमीत, बस अल्लाह के सिवा कोई जिंदा नहीं करता और कोई मारता नहीं। ये वो बात है जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि सिंगुलैरिटी जिसको साइंसदान कहते हैं वो दरअसल हमारे नुक्ते निगाह से मौत का दूसरा नाम है, लेकिन एक ऐसे वजूद का दूसरा नाम है जो दोबारा जिंदा हो सकता है, यानी जिंदगी की तरफ मुतहर्रिक हो सकता है, और बिलआखिर सिर्फ अल्लाह है जो मौत से जिंदगी निकालता है। अब ये वो मसला है जिसके मुतल्लिक दो दिन पहले एक जर्मनों के साथ सवाल और जवाब की मजलिस में सवाल उठाया गया था। मैंने सवाल करने वाले को, जो बहुत ज़हीन और साइंसी अमूर से और फलसफों से वाकिफ लगता था, उसको मैंने जब यह जवाब दिया कि खुदा ताला मौत से जिंदगी निकालता है, और उसकी तफसील उसको समझाई किसी हद तक, यानी एक दायरे में उसको समझाया कि मौत और जिंदगी का फर्क क्या है, और खुदा ताला जब जिंदगी निकालता है तो लाजिमन एक वजूद है जो इससे पहले मौजूद है। इस पर उस नौजवान ने एक सवाल उठाया, उसने कहा कि साइंस के तो नजरियात बदलते रहते हैं, आज कुछ और कल कुछ, और आप खुदा की तौहीद के मुतल्लिक उसके वजूद के मुतल्लिक एक साइंस का हवाला दे रहे हैं, हमें क्या पता कि कल को ये नजरिया क्या हो जाएगा। उस नौजवान से मैंने कहा कि जो बात मैं कह रहा हूं उसके मुतल्लिक तमाम दुनिया के साइंसदान 100% मुत्तफिक हैं, और इस बात में आज तक कभी साइंस में कोई तब्दीली नहीं आई, नकल आ सकती, और वो ये असूल है कि جو چیز کسی تخلیق کے عمل میں داخل کی جاتی ہے دوسری طرف سے جتنی داخل کی گئی تھی اس سے زیادہ نہیں نکل سکتی, یہ ناممکن ہے. پنجابی میں بھی محاورہ ہے, جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوئے گا. اب یہ ہے سادہ سی بات, جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا, لیکن یہ اسی سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس کا میں نے آپ سے بیان کیا. جو کچھ آپ ڈالیں گے ناممکن ہے کہ اس سے زیادہ نکلا ہے. بس اگر موت کے متعلق سائنسدان یقین رکھتے ہیں کہ ایک موت واقعہ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے زندگی پیدا کرنا زندہ کا کام ہے. جب تک کوئی زندہ وجود کسی موت کو زندگی کی طرف متحرک نہ کرے اس وقت تک موت از خود زندہ نہیں ہو سکتی. اس لیے تخلیق میں زندگی کا ڈالا جانا ضروری تھا, اور تخلیق میں زندگی زندہ وجود کی طرف سے ڈالی جا سکتی ہے, مردہ وجود کی طرف سے نہیں ڈالی جا سکتی. اب اس نوجوان کو میں یہ داد دوں گا کہ باوجود اس کے کہ شروع میں بڑے زور سے مخالفانہ انداز میں اٹھا تھا, یہ بات سنتے ہی وہیں بیٹھ گیا. میں نے ٹھیک ہے مجھے بات سمجھ آ گئی. ایک قانون ہے جس کے متعلق قطعیت کے ساتھ تمام دنیا میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کبھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں, جتنا ڈالو گے اس سے زیادہ نکل نہیں سکتا. کچھ بیچ میں ڈوب جائے گا, کم نکلے گا, زیادہ سے زیادہ اتنا ہی نکلے گا, مگر اس سے زیادہ نہیں نکل سکتا جو ڈالا جائے. بس کائنات اگر مردہ ہو چکی تھی, اور سنگولیرٹی کا یہی مطلب ہے کہ تمام صفات سے عاری ہو گئی تھی, تو پھر اس میں زندگی جب تک کوئی زندہ وجود نہ ڈالے اس وقت تک وہ زندہ ہو نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس اعلان عام کا ارشاد فرمایا گیا ہے اس میں یہی مرکزی نقطہ ہے, ہوا یو جی ہو یو نہیں. وہ ایک ہی ذات ہے جو زندہ کرتی ہے, اس لیے کہ وہ زندہ ہے, وہ یمیت, اور زندہ وجود تو جو باقی چیز ہے وہ مردہ کہلاتی ہے. وہ زندہ بھی کرتی ہے ذات اور مردہ بھی کرتی ہے. اس کی طرف فرمایا کہ تم دنیا کو اعلان کر کے بتاؤ کہ اس کی طرف میں تمہیں بلانے آیا ہوں, اور مجھ میں وہ صفات موجود ہیں جو زندگی کی صفات ہیں. یہ جو اعلان ہے یہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی بیان ہوا, جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ جب کوئی ایمان لے آئے تو ان کو بلاؤ تاکہ تم ان کو زندہ کرو. بس زندہ کرنا کیا ہے, یہ مضمون ہے جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. زندہ کرنا صفات باری تعالیٰ کا اختیار کرنا ہے, اس کے سوا اس کے کوئی معنی نہیں. بس سائنسی نقطۂ نگاہ سے, فلسفیانہ نقطۂ نگاہ سے یہ بات آپ کو سادہ لفظوں میں نے سمجھائی ہے, اور اس کے سوا کوئی بات ممکن ہے ہی نہیں. صفات باری تعالیٰ کا نام زندگی ہے, اس کے سوا کوئی بات نہیں. اور آن حضرت جب فرماتے ہیں کہ میں تم سب کو زندگی کی طرف بلا رہا ہوں, تو مراد ہے آپ نے لازماً اللہ تعالیٰ کی وہ تمام صفات اختیار کی جو بندوں کے لیے اختیار کرنا ممکن تھا. اور جب خدا کی صفات لے کر دنیا میں نکلیں تو قوموں کا کیا حق رہ جاتا ہے کہ وہ آواز اٹھائیں کہ ہم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ رنگ و نسل کا کیا حق رہ جاتا ہے کہ وہ آواز اٹھائیں کہ اے صفات باری تعالیٰ کی طرف بلانے والے, ہم تو ایک اور قوم اور ایک اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیونکہ صفات باری تعالیٰ ان سب میں برابر پھیلی پڑی. کوئی بھی قوم نہیں ہے جو اپنے ایسے وجود کا اعلان کر سکے جو صفات سے الگ وجود ہے. بس جو وجود اللہ کی صفات سے متصف ہو کر ان قوموں کو اکٹھا کرنے کا اعلان کرتا ہے, دنیا کی کسی قوم کے پاس کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ اس کا انکار کر سکے. بس آج اگر قومیتوں کو مٹانے والی کوئی طاقت ہے تو وہ توحید ہی کی طاقت ہے, اس کے سوا اور کوئی طاقت نہیں ہے. بس ہم جو ساری دنیا کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کے لیے اٹھے ہیں, हमारे पास तौहीद के सिवा और कोई रंग ही नहीं और कोई इख्तियार ही नहीं। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तौहीद की तरफ बुलाया है वो सिफात बारी ताला का एक दूसरा नाम है, उन सिफात का नाम है जो उसकी सारी मखलूक में और तमाम इंसानों में बुनियादी तौर पर पाई जाती है। उन सिफात के नाम पर आप दुनिया को इकट्ठा कर सकते हैं, उन सिफात से हटकर आप दुनिया को इकट्ठा नहीं कर सकते, और उन सिफात को अपनाना ही दर हकीकत एक ताकत का हसूल है। आपके अंदर इसके सिवा कोई ताकत नहीं है। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब कौम से उठाना और सारी दुनिया पर मंतकी तौर पर यह साबित कर देना कि इसकी आवाज पर लबैक कहना तुम्हारा फर्ज ही नहीं, तुम्हारी अपने वजूद के लिए जरूरी है, तुम्हारी बका के लिए जरूरी है, क्योंकि उस खुदा की तरफ से आया है, हुआ योजी व योगी, जो जिंदा भी करता है और मारना भी जानता है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुमने खुदा की सिफात जो जिंदगी की तरफ बुलाने वाली है वो हासिल न की तो तुम मर जाओगे, और इसके सिवा तुम्हारे लिए और कोई चारा नहीं। ये ऐलान करने वाला रसूल जब दुनिया को बुलाता है तो रसालत का आलमी होना एक तभी नतीजा बन जाता है। जब रसालत आलमी हो जाए जो सिफात बारी ताला के इजहार से होती है तो फिर ये फर्क कैसे रह जाएगा कि फलां यूरोपियन है, फलां अफ्रीकन है, फलां चीनी है, फलां अरब है, फलां हिंदुस्तानी है। ये सारे फर्क अज खुद तौहीद से मिट जाते हैं, कुछ भी बाकी नहीं। बस जिसको भी आपने जमात अहमदिया इस्लामिया में दाखिल करना है उसको सिफात से के हवाले से दाखिल करना होगा, उसे नेशनैलिटी के हवाले से दाखिल नहीं किया जा सकता। जहां भी आपने नेशनैलिटी के हवाले से दाखिल किया वहां अचानक तौहीद टूटेगी और तमाम वजूद मुंतशिर हो जाएंगे और बिखर जाएंगे, फिर हर रंग नस्ल कौम का अपना अपना यह हक रह जाता है जो अपने आप को बड़ा समझे और अपने आप को अलग समझे। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलमी होने का तौहीद बारी ताला से एक गहरा अटूट ताल्लुक है, और कुल आलम का आपकी तरफ रुजू करना इसके सिवा मुमकिन नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो सिफात हों जो इंसानों के रंगों और कौमों में फर्क ना करती, और वो सिफात खुदा के सिवा और कोई सिफात नहीं। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जब खुदा ताला ये फरमाता है ला शर्कियतम वला गर्बिया, ये कैसा नूर है जो ना मशरिक का है ना मगरिब का है, तो सवाए खुदा के नूर के इसका कोई और माना बनता ही नहीं। एक खुदा की जात है जो ना मशरिक की है ना मगरिब की है, सबकी बराबर है। बस आपको हर एक के लिए बराबर बनना होगा, और इसके बगैर ना नबूवत की इबादत हो सकती है ना खिलाफत की इबादत हो सकती है। अब सवाल यह है कि एक खलीफा को मुख्तलिफ कौमें क्यों कबूल करें, उनका सर फिर गया है कि एक पाकिस्तानी को खलीफा मान लें, या अगर खिलाफत कहीं खुदा और भेजना चाहे तो उसके सामने सर तस्लीम कम कर दें। पहली बात उनको यह सोचनी होगी कि एक अरब को माना था कि नहीं माना था, क्या अरब की हैसियत से माना था? हरगिज नहीं, क्योंकि ये सारी कौमें वो हैं जो अरबों को मुख्तलिफ पहलुओं से हकीर जानती हैं, आपस में लड़ रहे हैं, फसाद बरपा है, कौमी मकासद का कोई ख्याल नहीं। ये सारी बातें उनको फाड़ रही हैं और दुनिया में बज़ाहिर ताकतवर होने के बावजूद बिल्कुल हकीर और कमजोर दिखा रही हैं। तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी अमेरिकन, किसी जर्मन, किसी अंग्रेज, किसी यहूदी, किसी चीनी जापानी ने अरब के रसूल के तौर पर नहीं पकड़ा, सवाए अल्लाह की नुमाइंदगी के आपके वजूद में दूसरी कौमों को और कुछ दिखाई दे दिया। यही वजह है कि قومی تشخص غائب ہو گیا اور ایک ایسا رسول ابھرا ہے جو کل عالم کے لیے برابر ہو گیا. اور یہ چیز رسالت کے ساتھ لازمی ہے اور بہت سے لوگ نہیں سمجھتے. اب دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان مغربی قوموں نے کیوں قبول کیا اور کیوں اپنا لیا؟ وہ تو فلسطین کے باشندے تھے, وہ تو سیمیٹک قوم کے ایک شخص تھے. یورپ والوں کو کیا سوجی کہ ان کو ایسا اپنا لیا کہ خدا کا بیٹا تک بنا بیٹھے. امریکہ اور دور دراز کے ممالک مشرق و مغرب میں کیوں ایسے پیدا ہوئے جن کے رنگ نسل قومیت سب الگ الگ تھے, مگر فلسطین کے پیدا ہونے والے ایک شخص کو انہوں نے اپنا لیا؟ اس لیے کہ اس کی صفات میں انہوں نے الوہیت کے رنگ دیکھے تھے, اس لیے کہ ان الوہیت کے رنگ کو انہوں نے پھر بڑھا کر خدا میں تبدیل کر دیا. مگر عالمیت خدا سے تعلق رکھتی ہے, یہ مضمون ہے جو انہوں نے عملاً ثابت کر دیا. اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے تعصبات پیدا ہوئے, مگر وہ تعصبات کی کہانی بھی ایک دردناک اور الگ کہانی ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عیسائیت کی مثال آپ کے سامنے ہے, کتنی مختلف قوموں کتنے مختلف ممالک سے تعلق رکھتی ہے, مگر ایک ایسے انسان پر اکٹھی ہو گئی جو اپنی ذات میں ایک سیمیٹک قوم کا باشندہ تھا اور عربوں میں سے تھا فلسطینی ہونے کے لحاظ سے, اور ان کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ بین ہی اسی دلیل پر عرب ہی سے وہ ایک وجود اٹھے گا جو خدائی صفات ہونے کے لحاظ سے عالمی وجود بن جائے گا, اور اس کو خدائی صفات کا مظہر ہونے کے اعتبار سے ہمیں لازماً قبول کرنا ہوگا. بس جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قومیتوں کے فرق مٹا دیے تھے, وہی عیسیٰ ہیں جن کی قوموں نے لازماً محمد رسول اللہ کی طرف جھکنا ہے, کیونکہ آپ نے بھی قوموں کے فرق محض ایک چھوٹے دائرے میں نہیں مٹائے بلکہ عالمی دائرے میں مٹائے. کل عالم سے خدا تعالیٰ کی وہ صفات, خدا تعالیٰ کی ان صفات کی جلوہ گری کے ذریعے جو عالمی صفات ہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قومیت وغیرہ مٹا دیا, اس قوموں کا تفرقہ مٹانا لازم ہے مگر توحید کے ذریعے, وحدت الہی کے ذریعے. اس کو چھوڑ کر آپ قومی تفرقہ مٹانے کی کوشش کریں, آپ سر ٹکرا لیں, اپنے وجود کو پارا پارا کر لیں گے, مگر قومی تعصب کبھی مٹائے نہیں جاتے. ایک زبان ہی کو دیکھ لیجیے, جب پاکستان کا وجود ابھی بننے والا تھا حضرت مصطفی موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا اور بعد میں پاکستانی سربراہوں کو بات سمجھائی, آپ نے فرمایا کہ تم ایک قوم تو بن سکتے ہو, یعنی ایک توحید کے نام پر اکٹھے ہو رہے ہو, مگر زبانوں کو نہ مٹانا. یاد رکھو اگر تم نے بنگالی زبان پہ ہاتھ ڈالا تو وہ تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے مگر اپنی زبان کو نہیں مٹنے دیں گے. تو توحید میں بھی ایک تفریق ہے, اور وہ تفریق ایسی ہے کہ اگر اس پر آپ ہاتھ ڈالیں تو قومیں رد عمل دکھاتی, مگر خدا کی وحدانیت میں جو عالمی صفات کی جلوہ گری ہے اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, وہ سب کے مطلب برابر ہے. سمجھ ایسا ہی ہوا, بنگال میں جو علیحدگی کی تحریک چلی ہے وہ اس لیے چلی کہ بعد میں لیاقت علی خان وغیرہ نے زبان کو کچلنے کے لیے کوشش شروع کر دی. ان کا یہ خیال تھا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان جو اس وقت مشرقی پاکستان کہلاتا تھا, ان کو اکٹھا کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ زبان ختم کر دو ان کی اور اردو پھیلا دو, اور اردو زبان دونوں کو باندھ دے گی. مگر جیسا کہ حضرت مسلم موعود نے اپنی فراست سے سمجھا, وہی بات درست ثابت ہوئی. زبان پر ہاتھ ڈالنے کے نتیجے میں وحدت بنی نہیں, ٹوٹ گئی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کے اعلان کے باوجود یہ بھی فرماتا ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اللہ تعالیٰ کی کے نشانات میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, وہ ایک ہی ہے پیدا کرنے والا, مگر تمہاری زبانوں اور رنگوں کے اختلاف بھی اسی نے پیدا کیے ہیں. بس توحید میں ایک رنگ و نسل اور زبانوں کے اختلاف کا جلوہ بھی ہے. جو توحید کو باطل نہیں کرتا, جو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے عالمی توحید کے علمبرداروں, رنگ و نسل اور زبانوں کو مٹانے کی کوشش نہ کرنا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, یہ رنگ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائے ہیں. ان کے الگ الگ ہوتے ہوئے بھی توحید کے بندھن سے ان کا ایک گلدستہ بناؤ. یہ ساری قومیں ایک خوبصورت گلدستے کی صورت میں توحید کے دھاگے سے باندھی جائیں, تو یہ وہ عالمی منظر ہے توحید کا جو جگہ جگہ دکھائی دے رہا ہے. جرمن قوم کی جرمن زبان کی صورت میں توحید جلوہ گر ہوگی, ان کے خوبصورت سرخ و سفید رنگ کی صورت میں توحید جلوہ گر ہوگی, افریقنوں کی زبان کی صورت میں وہاں توحید جلوہ گر ہوگی, ان کے سیاہ رنگ میں بھی ایک شان ہے. آج چونکہ سفید قوموں کی بادشاہی ہے اس لیے لوگ یہ سمجھ نہیں سکتے, مگر رفتہ رفتہ یہ سمجھنے لگے ہیں, اور کچھ کچھ ان کو سیاہ رنگ کا بھی حسن دکھائی دینے لگا ہے. مگر جانوروں میں دیکھو ان کو دکھائی دیتا ہے بالکل سیاہ مرغی یا بالکل سیاہ پرندہ, اور بالکل سفید مرغی اور بالکل سفید پرندہ, یہ اپنے اپنے حسن رکھتے ہیں. اور کوئی سفید مرغی کسی کالی مرغی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ جاؤ جاؤ تمہارا تو رنگ کالا ہے, وہ آگے سے برابر طور پر یہ کہہ سکتی جاؤ جاؤ تمہارا تو رنگ ہی کوئی نہیں, چٹی سفید کچھ بھی نہیں تمہارے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں توحید باری کا اعلان کروایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہاں یہ اعلان بھی ساتھ کروایا کہ تو کہہ دے کہ رنگ اور زبانوں کے فرق یہ میرے اللہ نے پیدا کیے, خبردار ہے جو تم نے ان پر ہار ڈالا, سفید فاموں کو سفید فام رہنے دو, خوشی سے تم سے تعلق زوجیت قائم کرتے ہیں تو کریں, نہیں تو نہ کریں, ان کی زبانوں کو بھی نہیں چھیڑنا, ہر ایک کی زبان کا احترام کرو, اس کی عزت کرو, لیکن اس کے باوجود ان کو بتاؤ کہ یہ خدا ہی کی شان ہے توحید باری تعالیٰ کی کہ وہ اس طرح مختلف رنگوں میں جلوہ گر ہوئی ہے. اور مختلف رنگ صفات کے جب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ صفات ابھرتی ہیں جو الہی صفات لا شرقیتم ولا غربیتم. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایک نبی ہونا اور کل عالم کا اکٹھا ہونا, دیکھو قرآن کریم نے کس کس طریق سے سمجھا رہا, اس کے سارے پہلو آپ کو روشن کر دیے. لیکن یاد رکھیں صفات کے صفات یعنی خدا کی صفات کے صفات جن کا رنگ الگ الگ نہیں, خدا کی صفات کے سوا جن کی زبان الگ الگ نہیں, وہ ایک ہی رنگ اور ایک ہی زبان رکھتی ہیں. ساری دنیا کو آپ مختلف زبانیں بولنے والوں کو مختلف رنگوں کے لوگوں کو اب ایک ہاتھ پہ اکٹھا نہیں کر سکتے. بس یہ صفات ہیں کیا, جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا خلافت کو آپ دیکھیں, یہ سب دنیا کی خلافت ہو ہی نہیں سکتی اگر کسی ایک قوم سے تعلق رکھتی, لیکن جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ یا آپ کے خلیفہ کا خلیفہ ہو, اس کے اندر خدا تعالیٰ کی وہ صفات ضرور جلوہ گر ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں رنگ و نسل کو اپنی جگہ دیکھتا ہے مگر بری غیر کی نظر سے نہیں دیکھتا, اپنی نظر سے دیکھتا ہے. جیسے خدا کالے کو اپنا سمجھ کے دیکھتا ہے, جیسے خدا جرمن بولنے والے کو اور انگریزی بولنے والے کو اور اسپینش بولنے والوں کو اپنا سمجھ کے دیکھ رہا اور سن رہا ہوتا ہے, اسی طرح خلیفہ وقت کو خدا تعالیٰ وہ الہی صفات عطا فرماتا ہے جو کل عالم کو ایک ہی رنگ میں دیکھنے لگتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو خلافت کا وجود مٹ جائے گا, کہ کوئی حیثیت باقی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب میں افریقہ گیا تھا ان لوگوں کو میں نے یہ بات سمجھائی, میں نے کہا دیکھو मैं जब तुम लोगों से मिलता हूं तो खुदा गवाह है, एक जर्रा भर भी मुझे तुम्हारे रंग और अपने रंग का कोई फर्क दिखाई नहीं देता, तुम्हारी जुबान और अपनी जुबान का कोई फर्क सुझाई ही नहीं देता मेरे जहन में, तो इसका तसव्वुर भी नहीं आता कि हम अलग अलग हैं। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सिफात बारी ताला में हम इकट्ठे हुए हैं, तो इस पहलू से तुम्हारा वतन भी मेरा वतन है, लेकिन मैं तुमसे इस वतन का हक कोई नहीं मांगता। ये वैसा ही मज़मून है जिसे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मैं तुम सबकी खिदमत करता हूं मगर तुमसे उजरत कोई नहीं चाहता। बस मैंने कहा तुम जहां तक तुम्हारे हकूक का ताल्लुक है मैं उन हकूक को उसी तरह अदा करूंगा जैसे मैं आपके मुल्क का आपकी कौम का बाशिंदा हूं। जहां तक आपकी कौम से मेरी तवक्कुआत का ताल्लुक है इसके सिवा मेरी कोई तवक्कु नहीं कि आप उन सिफात में मेरा मुझसे तावन करें जो इलाही सिफात है, जो आलमी सिफात है, उनमें मजहब की और कौम ना उनमें कौम की और जोग्राफिया की कोई तफरीक नहीं है। और इस पैगाम को अफ्रीका ने समझा और बड़े जोश के साथ और बड़े बड़े वलवलों के साथ उन्होंने जवाबन कहा हाँ हम यकीन करते हैं अब हम ही में से एक हैं, अब हमसे जुदा अलग वजूद नहीं। और ये वो एक शख्सियत है जो बनाने से नहीं बना करती, ये अंदर से उठती है, इसका ताल्लुक अल्लाह ताला की जात से है। अगर आप अल्लाह के वफादार बनेंगे तो लाजिम है कि आपके अंदर ये शख्सियत पैदा हो। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमियत आपकी कामिल गुलामी के नतीजे में खुलफा को भी अता होती है, और उसी हद तक जब तक वो अपनी सिफात को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग अता करते हैं। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है ऐलान कर दे वत्तबेऊहु लअल्लकुम तहतदून, ऐ खुदा के बंदो उसकी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की अतात करो, वही है जो तुम्हें खुदाए वाहिद यगाना की तरफ ले जाएगा, वही है जिसकी सिफात तुम्हें खुदा की सिफात से मिला देंगी अगर तुम उसकी अतात करोगे, जो जैसे आप फरमाते हैं ये रसूल आलमी है, ऐ उसके गुलामों तुम भी आलमी बन जाओ। ये वो आलमी सिफात हैं जिनको अपनाए बगैर दुनिया को कोई आलमी पैगाम नहीं दिया जा सकता। इसीलिए मैं मुसलसल जोर लगा रहा हूं, बार बार आपको समझा रहा हूं कि खुदा ताला के लिए खुदा की खातिर और अपने वजूद की खातिर बनी नौ इंसान की खातिर अपने आप को किसी कौमी शख्सियत के साथ ना उभारें बल्कि तौहीद की शख्सियत के साथ उभारें। आपकी जात में दुनिया को खुदा दिखाई देने लगे, दुनिया देखे कि आप रहमान हैं, रहीम हैं, करीम हैं, हौसला रखते हैं नीचे उतरने का, गरीबों की बात का, कमजोरों की बात सुनने का हौसला रखते हैं, गुनाहगारों से भी ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ अपनी बड़ाई और नेकी में मगन नहीं है और सबकी खैर चाहते हैं। जब आप रहमान बन के बरसते हैं तो हर चीज पर बराबर अपना फैज जारी करते हैं, गिर्दोपेश सब आपसे फैज उठाते हैं। इस वजूद के तौर पर आप उभरेंगे तो नामुमकिन है कि दुनिया की कोई कौम आपको ठुकरा सके, क्योंकि आपके अंदर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रहमानियत की सिफात जलवा कर हों। इस पहलू से मैंने दो तहरीकें आपके सामने खसूसियत से रखी थी, एक ये कि कुल आलम को एक करने के लिए अपने अपने मुल्क में वहदानियत के मनाज़िर पेश करें। अब जर्मनी इसके लिए एक बेहतरीन सरजमीन है, जर्मन कौम को वहदानियत में इकट्ठा करना और एक वहदानियत में परोना ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जर्मन कौम के जरिए फिर आगे दुनिया में वहदानियत के पैगाम को आम करना निस्बतन ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन होगा ये तभी अगर आप अपने आप को रहमान खुदा के नुमाइंदे के तौर पर पेश करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आलमी सिफात के हवाले से पेश करें। आप में वो पाकिस्तानी न देखें, आप में वो बंगाली न देखें, आपने अरब ना देखे, आपने कोई अफ्रीका ना देखे, एक ऐसा इंसानी वजूद देखे जिसमें अल्लाह ताला की सिफात जलवागर है, तो फिर वो पागल तो नहीं कि अपने वजूद को अलग समझे। वे खुदा से मिले बगैर वो जिंदा रह ही नहीं सकते, खुदा के हुए बगैर उनको वजूद का तशख्स ही कोई नहीं मिलता, वो मुर्दा चीज है। बस यही वो वजह है जो मैंने इस आयत के हवाले से आपको साइंसदानों की जुबान में आप बात ऐसी बातें समझाई जिनका ताल्लुक सिफात बारी ताला और वजूद से है। आप अगर सिफात बारी ताला को अपना लेंगे तो लाजमन इनको अपनी जिंदगी की खातिर आपसे जुड़ना जरूरी महसूस होगा, लाजमन ये आपसे मिलेंगे और आपसे एक हो जाएंगे, उसके बगैर इनको जिंदगी का मान ही समझ नहीं आ सकता, उसके बगैर इनको अपनी जिंदगी बेकार दिखाई देगी और हकीकत में वो जिंदगी होगी भी नहीं जो सिफात से दूरी का नाम है। बस वो हो जाए आपके साथ सिफात इलाही की, आपका नाम सिफात इलाही हो जाए, यानी सिफात इलाही का एक दूसरा नाम आप हो जाए, आपसे जुड़ना सिफात इलाही से जुड़ना बन जाए, आपसे दूरी सिफात इलाही से दूरी हो जाए। ये अगर आप में ताकत है, ये कर सकते हैं, और हर इंसान में ये ताकत है कि अपनी अपनी तौफीक अपने अपने दायरे में ऐसा कर दिखाए, तो फिर लाजमन दुनिया की हर कौम आपसे ताल्लुक जोड़े, लाजमन आप ही के हवाले से फिर तौहीद कुल आलम में फैले, और इसके फैलने के बावजूद कौमियतें खुद मिट्टी चली जाएंगी मगर अपने अपने दायरे में फिर भी जलवा दिखाएंगी। क्योंकि कुरान करीम फरमाता है अल्लाह ताला ने रंग और जुबानों को खुद पैदा किया है, बस इस्लाम एक गुलदस्ते की शक्ल अख्तियार करता है, हर फूल तौहीद की जलवागरी करेगा, हर जुबान में खुदा के रंग दिखाई देंगे, हर रंग खुदा की जलवागरी करेगा, हर रंग में खुदा के रंग दिखाई देंगे, और फिर एक होंगे सबके साथ और एक दूसरे को अलग अलग नजरों से नहीं देखेंगे बल्कि मोहब्बत और प्यार की ऐसी नजरों से देखेंगे कि हर एक को दूसरे में सिफात इलाही जलवागर दिखाई देंगे और उसकी अपनायत उनको आपस में बांधेगी। ये एक ही तरीक है आज इस्लाम को दुनिया में गालिब करने का और गालिब रखने का, अगर इस तरीक को छोड़ेंगे तो इस्लाम ने जो कुछ भी कमाया है वो सब खोया जाएगा और कौमें फिर अलग अलग हालतों में बढ़ जाएंगी, कि वो अपने रंगों में ऐसा डूबेंगी कि खुदा के मुत्तहिद करने वाले रंग उनमें नहीं रहेंगे, अपनी जुबानों में ऐसा गर्क होंगी कि खुदा ताला की जुबान उनको एक हाथ पर इकट्ठा करने के लिए नहीं बुलाएगी, और इसी का नाम फिर वो जिंदगी से मौत की तरफ हरकत है जो रफ्ता रफ्ता कौमों को मुशरिक बना देती है, उनको एक दूसरे से जुदा कर देती है, पहले कौमें कौमों से अलग होती हैं, फिर कौमों के अंदर ग्रोह हैं जो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यहां तक के शहर शहर से अलग होने लगते हैं, शिमाल जुनूब से अलग हो जाते हैं, एक हम्बर के लोग हैं, एक म्यूनिख के लोग हैं, हर एक का अपना अपना एक तशख्स बन जाता है, मशरकी जर्मनी और हो जाएगा, मगरबी जर्मनी और हो जाएगा। तो तौहीद के सिवा नामुमकिन है कि बनी नौ इंसान को बल्कि कौमों को भी एक हाथ पर इकट्ठा रखा, बस तौहीद बारी ताला की गुलामी करें और उसमें अपने वजूद को खो दें, उसी के नतीजे में इस्लाम को तहफ्फुज़ है, उसी के नतीजे में मोहम्मद रसूलुल्लाह की आलमियत जाहिर होगी, उसी के नतीजे में खिलाफत अहमदिया की आलमियत कायम रहेगी, ये मिटा दें तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इस पहलू से जब मैंने आपको पैगाम दिया कि आप कसरत से यहां लोगों को अहमदी बनाएं तो ये मुराद थी इन मानों में अहमदी बनाएं कि आइंदा जो सदी पूरी होने वाली है उसमें मेरी ये ख्वाहिश है कि जर्मन जमात अहमदिया जिसमें हर किस्म के मुसलमान या हर किस्म के इंसान मगर एक उस किस्म के मुस्लिम मौजूद होंगे, जर्मन भी होंगे, अफ्रीकन भी होंगे, अमरीकन भी यहाँ बसते हैं, यहाँ यूरोप के मुख्तलिफ लोग हैं, मुसलमान ममालिक से आए हुए मुख्तलिफ लोग हैं, मशरक़ बईज के मुख्तलिफ लोग हैं, सिलोनी हैं और बांग्लादेशी हैं चीनी जापानी सब किस्म के लोग आज आपको जर्मनी में दिखाई देते हैं। तो हिंद में इनको परो दें, एक बना दें, और फिर ये सारे अपने अपने दायरे में तौहीद के अलम बरदार बनकर लोगों को आवाज दें और इस तरह बुलाएं जिस तरफ आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही नौ इंसान को बुलाया था, बोल या अय्युह अन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन, ए मोहम्मद तुझे अब यह हक है, तू मेरा हो चुका है, तू एक हो गया है, मेरी जात में खोया गया है, इसलिए तुझे मैं मुकर्रर करता हूं कि तमाम दुनिया में ऐलान कर आओ मेरी तरफ आओ, क्योंकि मेरी तरफ आना उस खुदा की तरफ आना है, लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज, जिसके पास आसमान और जमीन की बादशाही। बस कोशिश ये करें कि जो सदी का साल है उस साल में आप सब मिलकर कम से कम 1,00,000 एमडी उस साल के पूरा करें, और यूरोप में इस पहलू से आप पहला मुल्क होंगे जिसने एक साल में खुदा ताला के मुख्तलिफ कौमों से जवानों से ताल्लुक रखने वालों को एक हाथ पर बांधा है, और आपके लिए मुमकिन है। जो आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं हरगिज नामुमकिन है, बल्कि बेईद नहीं कि इससे भी बहुत ज्यादा अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। बस एक तो तौहीद का ये जलवा दिखाएं, दूसरा मस्जिदों की तामीर की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि मस्जिदों के मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल इन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदु माल्लाह अहदा, कि मस्जिदें बनाओगे तो यह पैगाम भी आम होगा, ये वो घर है जहां खुदा के सिवा किसी को नहीं बुलाया जा रहा, उसके सिवा और कोई वजूद नहीं है जिसके लिए इबादत की जिसकी इबादत की तरफ बुलाया जाता। तो इस पहलू से मैंने 100 मसाजिद का ऐलान किया था कि आप कोशिश करें कि आपको इस सदी के आखिर तक 100 मसाजिद बनाने की तौफीक अता हो। इस ज़मन में मैं अभी फिर वापस इस बात की तरफ आता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक गम की खबर भी सुनाना चाहता हूं और उसमें खुशी की यानी बुशरा की खबर भी मौजूद है। हमारी वो चौथ वो वालिदा जो इस वक्त हज़रत मुस्लिम मौऊद की बेगमात में से जिंदा दो जिंदा थीं, जिनमें से एक वो आपा बुशरा या सैयदा मेहरापा हैं, कल उनके विसाल की खबर आई है। उन वो मेरे मामू अजीजुल्लाह शाह साहब की शहजादी थी और गालिबन जेहलम में, या मुझे अब याद नहीं, मगर इतना मुझे पता है कि 1919 में अप्रैल में आप पैदा हुई, और मेरी वालदा की वफात के बाद अल्लाह ताला की तरफ से अता होने वाली बाज़ खुशखबरियों के नतीजे में हज़रत मुस्लिम मौऊद ने हम बच्चों की खातिर उनसे शादी की, यानी मैं और मेरी 3 बहनें थीं, और हज़रत मुस्लिम मौऊद की यह ख्वाहिश थी कि अपने ख़ानदान का ही यानी मेरी उम्मी के ख़ानदान का ही कोई शख्स हमारी निगहदाश्त करे, क्योंकि इनके मुतल्लिक डॉक्टरों का ये फैसला था कि एक बीमारी की वजह से इनके बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए हज़रत मुस्लिम मौऊद ने यह भी सोचा कि एक ऐसी माँ इनको मिलेगी जिसके अपने अलग बच्चे नहीं होंगे, मजबूरन वो इन्हीं से प्यार करेगी, और इसी वजह से आपका नाम मेहर आपा रखा गया, जिसका आपकी एक रोया या इल्हाम से ताल्लुक था कि ऐसी आपा जो मेहर बन जाए। अब मेहर उम्मी नहीं फरमाया, मेहर आपा, और वाकयातन हम सब का ताल्लुक आपसे आपा ही की किस्म का था, मगर मेहर वाला ताल्लुक कम से कम मैं अपनी जात में जरूर कह सकता हूँ कि मेरा उनसे ताल्लुक हमेशा मेहर का रहा, यानी मोहब्बत और प्यार का ताल्लुक। बहरहाल आखिरी उम्र में उनको बाद ऐसी तकलीफें लाक थी जिनके नतीजे में जिंदगी अजीरन हो गई थी, इसलिए उनका जाना उनके लिए रहमत था, और उनके लिए भी जो इस तकलीफ को देखते और तकलीफ को महसूस करते थे। भारत आपने जाना था, 78 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको वापस बुलाया। इनके मुतल्लिक आज जो मैं ऐलान कर रहा हूं इसका उस मज़मून से ताल्लुक है जो मैं अभी आपके सामने बयान कर चुका हूं। सैयदा मेहराफा मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ वसीयतें करती रहीं, क्योंकि अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उनकी नज़र अपने भाइयों पर, बहनों पर और उन बच्चों पर पड़ती रही जो उनके घर में पलते थे। अपनी जायदाद का सारा इंतज़ाम उन्होंने मेरे सुपुर्द कर दिया था और इस बारे में कामिल यकीन था, यानी खिलाफत से बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं, मुझ पर, मेरी ज़ात पर कामिल यकीन था और ये शर्त थी कि मैं उनको हिसाब पेश करने का पाबंद नहीं होऊंगा। उनको यकीन था, रहेगा, कि मैं जो भी करूंगा दुरुस्त करूंगा और उनकी जायदाद वो ऐसे संभालूंगा कि बफ़ज़्ल ताला बाकियों से बेहतर होगी, कम करनी होगी। चुनांचे अल्लाह ताला ने मुझे इसकी तौफीक अता फरमाई और उन्होंने एक वसीयत लिखी जो बहुत पहले की बात है, मलक सैफुररहमान साहब उस जिंदा थे। उस वसीयत में उन्होंने ये लिखा कि मैं अपनी जायदाद को 5 हिस्सों में तकसीम करना चाहती हूँ। एक हिस्सा जमात अहमदिया के लिए होगा, एक हिस्सा मिर्ज़ा ताहिर अहमद के लिए होगा, 3 हिस्से मेरे 3 भाइयों के लिए होंगे और बहन आपा नास्ता जो थी उनसे वो इजाज़त ले चुकी थी कि वो खुद खुशी के साथ इस वसीयत को कबूल करती हैं। मैंने उनको समझाया और मुख्तलिफ हवाले देकर आखिर रजामंद कर लिया कि आप मेरा हिस्सा बीच में से निकाल दें। जहाँ तक भाइयों का ताल्लुक है, आपकी मर्जी है रखें, मर्जी है ना रखें, लेकिन उनकी चुनाचे उन्होंने ये बात मेरी मंजूर फरमा ली और मेरा 5वां हिस्सा निकाल दिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद 2 बड़े भाई उनके, यानी अपने से छोटे थे मगर छोटों से बड़े, छोटे से बड़े थे ना, एक बड़ा भाई और एक सबसे छोटा भाई, ये 2 फौत हो गए। उस वक्त फिर उनके दिल में अजबुत ख्याल आया कि क्यों ना मैं सब कुछ जमात के लिए छोड़ दूँ और भाइयों के लिए या बहनों के लिए कुछ न रखूँ। उन्होंने मुझे फिर खत लिखा कि मेरी अब ये ख्वाहिश हो रही है। मैंने कहा देखें, शरीयत को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो चाहे करें, जो अल्लाह ताला ने शरीयत का हक अता फरमाया है उसको आप नहीं ले सकते। इसलिए आप, मैं तब आपकी बात मानूंगा अगर आप अपने भाइयों या एक भाई रह गए थे उनसे लिखवाएं और अपनी बहन से लिखवाएं कि हम बाकायमी होश व हवास पूरी तरह अपने हकूक को सामने रखते हुए ये फैसला करते हैं कि हम हजरत मेरा पाक की जायदाद में से ना अब ना आइंदा किसी चीज़ के भी ना ख्वाहिशमंद हैं ना दावेदार हैं और इनको हमारी तरफ से इजाज़त है बखुशी वो सब कुछ खुदा के हुजूर पेश कर दें। चुनांचे इस पर उन्होंने फिर मुझे खुशी से ज़ुबानी भी बताया और लिखा भी कि अब मैं ये सारी जायदाद आपके सुपुर्द करती हूँ इन शर्तों के साथ। नंबर 1, जब तक आपको तौफीक है आप ही इंतज़ाम रखें, मेरे भाइयों में से या बहनों में से, ख़ास तौर पर भाई के मुतल्लिक फरमाया कि अगर इसकी कोई ज़रूरत हो तो आपको हक है इस जायदाद में से जो मैं जमात के सुपुर्द कर रही हूँ उनको दे दें और मेरी ज़रूरतें जब तक मैं जिंदा हूँ उसे पूरी कर दें, इसके सिवा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मेरी तरफ से आपको इख्तियार है कि अपनी ज़रूरत पड़े और कोई कर्ज लेना हो मेरे हिसाब में से तो मुझे लिखने की इजाज़त लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं, आप पर मुझे कामिल एतमाद है, जो चाहें लें, जब चाहें वापस करें। इस हैसियत से मैंने उनकी जायदाद का इंतज़ाम संभाल लिया और वफात के वक्त तक जो भी उनकी वसीयत का हिसाब था, यानी इसके अलावा जो वसीयत थी सदर ने उनके हक में, वो दे दी गई। اب جو بقیہ جائیداد ہے وہ انہی شرطوں کے ساتھ میرے قبضے میں, یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے امین بنایا ہے, میرے سپرد ہے. چونکہ انہوں نے مجھے اجازت دی تھی کہ اپنی ضرورتوں کے لیے قرض لے لیا کروں, میں نے اس میں سے کبھی قرض لیے, واپس کر دیے, پھر لیے. آج صبح فون کے ذریعے, یعنی کل میں نے پیغام دیا تھا, آج صبح فون کے ذریعے اب مجھے یہ تسلی بخش پیغام مل گیا ہے کہ جو بھی قرضہ میں نے ان سے لیا تھا وہ پائی پائی ادا ہو چکا ہے, اس میں سے کچھ باقی نہیں رہا. اس لیے جو کچھ ان کے پاس باقی ہے اس کی دو شکلیں ہیں. ایک, میں وقتاً فوقتاً کچھ یورپ منتقل کرواتا رہا, اور کچھ جائیداد کی صورت میں پاکستان میں ہی ہے جس میں سیامد ہوگی. کیونکہ یہ توحید کا اعلان جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس کا مساجد کی تعمیر سے بھی تعلق ہے. اس لیے سیدہ میرا پا کی وفات کی اطلاع چونکہ مجھے جرمنی میں ملی ہے, اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی طرف سے جو روپیہ یہاں موجود ہے اس میں سے اور کچھ باہر سے منگوا کر 300,000 جرمن مارک جماعت احمدیہ جرمنی کے سپرد کروں گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ 100 مساجد کی جو تحریک ہے اس میں سے ہر 100 میں سے 3,000 ان کی طرف سے ہوگا, اور سرے دست اپنی طرف سے 50,000 مارک پیش کرتا ہوں, اور اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ اس کو بڑھا بھی دوں گا. تو آئندہ 3 سال میں یہ پورا ہو جائے گا. اس لیے جماعت جرمنی کو جو توحید کے نشان کے طور پر مسجدیں بنانا ہے, اس کی میں آج سیدہ مہرا پا کی وفات کے ساتھ تحریک کرتا ہوں. اس کے لیے الگ انتظام کریں چندوں کا, جس کو جتنی توفیق ہے وہ دے, اور کوشش کریں کہ اس صدی کے آخر تک, یعنی آخری سال تک, جماعت احمدیہ کی طرف سے 100 مساجد جرمنی میں یا بنائی جا چکی ہوں یا ان کے لیے زمینیں لے لی گئی ہوں, اور اس پر خواہ جھونپڑا ہی بنانا پڑے, ایک جھونپڑا بنا کر اور مینار کا سمبل بنا دیں تاکہ ہم یہ کہہ سکتے ہوں کہ یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور واقعتاً وہاں عبادت ہو. جھونپڑے سے مراد یہ ہے کہ چھت تو ہونی چاہیے جس کے اوپر, جس میں بارش اندر نہ آئے یا برف نہ پڑے اندر. مگر یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی, اس مسجد کا یہ حال تھا کہ بعض دفعہ بارش ہوتی تھی تو چھت پہ سے پانی نہیں بلکہ کیچڑ بھی اترا کرتا تھا, اور نیچے مسجد کچی ہونے کی وجہ سے سجدہ کرتے وقت لوگوں کی پیشانیوں پر کیچڑ لگ جایا کرتا تھا. وہ اسی حالت میں وہ مسجد تھی جو دنیا کی سب مساجد میں سب سے اوپر کی ہے, محمد رسول اللہ کی مسجد. تو اس طرح آغاز کریں, یعنی اس رسول کی سنت پر چلتے ہوئے آغاز کریں جس رسول کی سنت پر آپ نے دنیا کو اکٹھے کرنا ہے, اور جس کی سنت پر چلتے ہوئے آپ نے اللہ کے گھر بنانے ہیں صرف اللہ کی خاطر. بس خدا کرے کہ آپ کو یہ توفیق ملے کہ صدی کے آخر پر ہم یہ اعلان کر سکیں کہ جماعت جرمنی کو توحید کے 2 تقاضے پورے کرنے کی توفیق ملی ہے. ایک یہ کہ 1,00,000 احمدی یورپ میں توحید کے علمبردار اس آخری سال میں ہم نے بنائے, اور ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کے نام پر اسی کی خاطر 100 مساجد کی ہم نے تعمیر کر دی ہے. اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, سیدہ بشرا بیگم میرا پا کا ایک مستقل حصہ ہوگا, وہ ہر مسجد میں ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہوگا, اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. اللہ کرے کہ ہمیں یہ توفیق عطا ہو. آپ میں سے بہت سے ہیں میں جانتا ہوں, جن میں غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں, مگر جماعت جرمنی میں جو مالی قربانی کی روح پیدا ہو چکی ہے وہ عظیم شان ہے, اور اس قربانی کی روح کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اپنی توفیق سے بڑھ کر وعدے نہ کریں. یاد رکھیں کہ توفیق سے بڑھ کر وعدہ کرنا مومن کو زیب نہیں دیتا, لیکن توفیق بڑھنے کی دعائیں کرتے رہیں. اتنا وعدہ کریں جس کی توفیق ہو اس کو پورا کریں, और फिर और तौफीक बढ़ने की दुआ करें, फिर अल्लाह और अता करेगा। और ये मेरा तजुर्बा है जिंदगी का कि हमेशा इसी तरह होता है, अपनी तौफीक के मुताबिक जानदारी से इखलास के साथ अपना हिसाब करते हुए ये देखते हुए कि कहाँ से रकम लेनी है, फिर वादा करें, ताकि वादा जो है महज फर्जी वादा ना हो। बाद लोग समझते हैं कि इखलास का मतलब यह है कि फर्जी वादा कर लो और हाथ पर ले कुछ होता नहीं, लाख लाख दस दस लाख के वादे कर बैठते हैं और पहले पूरे नहीं हुए तो अगले फिर कर बैठते हैं। चुनाचे मैंने जमात को यानी निज़ाम जमात को ये नसीहत की है कि आइंदा से ऐसे लोगों का कोई वादा भी कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला से खेल नहीं की जा सकती, इखलास की भी खेल नहीं की जा सकती। जो कुछ खुदा के हजूर पेश करना है वो करें जो करना है, और अगर ज्यादा है तो जब तौफीक होगी उसको ज्यादा भी दे दें, मगर जो वादा किया उससे कम नहीं होने देना, सवाए ऐसे इत्तफाकी हादसात के जिसमें इंसान मजबूर हो जाता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि ऐसे लोगों के क्या हालात हैं। बस आप सबको मेरी अमूमी नसीहत यही है और बाकी दुनिया को भी मैं आपके हवाले से नसीहत कर रहा हूँ कि हम अल्लाह की कौम है, तौहीद के गुलाम हैं। हमने जो 100 साल जश्न मनाना है वो दुनिया की तरफ तो नहीं मनाना, ये बैंड बाजों के साथ और आतिशबाजियों के साथ एक सदी के ख़त्म होने और दूसरी के शुरू होने का ऐलान कर रहे हैं। हम तो तौहीद के पुजारी हैं, एक सदी से सर झुकाते हुए खुदा के हजूर गिरिया और जारी करते हुए अगली सदी में दाखिल होंगे। उन सब कामयाबियों पर सर झुकाते हुए जो बज़ाहिर हमें नसीब होंगी मगर अल्लाह के फजल से हमें आता होंगी, हमारी कोशिश का कोई उसमें फिल हकीकत माना नहीं होगा क्योंकि हमारी कोशिश भी अल्लाह ही की तौफीक से। बस जिस तरह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के वक्त मक्के में दाखिल हुए थे, ऐ आलमगीर जमात गौर से सुन लो कि हमने इस तरह ये सदी मनानी है, इस तरह उस सदी में दाखिल होंगे। फतेह मक्का जो तमाम फतूहात की मां थी, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में दाखिल हुए कि रोते रोते आपका सर कजावे से लग गया, कजावे पे सजदा करके आंसू बहा रहे। दुनिया का सबसे बड़ा फातह इस तरह सबसे अजीम फतह मना रहा था कि खुदा के हजूर उसकी रूह भी सजदा रेज थी, आपकी जान, आपकी जुबान, आपका कलाम, आपका सर, सब कुछ खुदा के हजूर सजदा कर रहा था। ऐसे आंसुओं के साथ इस तरह सर झुकाते हुए आपने दाखिल होना है कि सारी दुनिया को अजीम फतूहात दिखाई दे रही। जमात अहमदिया ने बारहा जगह जगह जिस तरह खुदा ताला के हजूर पैदा करने वाले मुवाहिदों की जमातें पैदा कर दी, कसरत के साथ दुनिया की हर कौम में से, दुनिया के हर रंग में से और हर जुबान में से, हमें अगली सदी से पहले ऐसी कौमें तैयार करनी है जो मुवाहिदीन की कौमें हों, जो तौहीद बारी ताला के सवा किसी और कसर के उस्ताम में सर न झुकाए। दुनिया की नजर में एक अजीम शान कारनामा होगा, इतनी मसाजिद बनाएंगे कि सारे दुनिया के मुसलमानों को मिलकर भी इस दौर में इतनी मसाजिद की तौफीक न मिली, और दाखिल इस तरह होंगे जिस तरह हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह फतेह मक्का के बाद दाखिल हुए थे। और यही तौहीद का सबसे आला खूबसूरत मंजर है, सर झुकाते हुए रोते हुए खुदा के हजूर ये इकरार करते हुए कि ऐ हमारे रब हम में तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है तेरी तौफीक से बता हुआ है। ये हमारी सदी का जश्न है जो हमें मनाना है, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। बस सईदा बेरहपा की के विसाल ने एक नई बात भी आपके अंदर पैदा कर दी है जमात जर्मनी में, ये सारे ख्यालात मेरे दिल में उस विसाल के साथ ही उठने शुरू हुए और इस तरह पाया तकबीर को पहुंचे। अल्लाह ताला हमें हर वफात को जिंदा करने की तौफीक बख्शे, जो भी हम में से बरे सिफात बारी ताला को पीछे रवायात की सूरत में जिंदा छोड़ता चला जाए, खुदा करे कि ऐसा ही हो। अब मैं इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं और खुदा मद अहमदिया के बाकी जो के बाकी प्रोग्राम और इंतजाम हैं अब खुतबे के बाद वो शुरू हो जाएंगे और आपको इल्म है कि वो क्या है। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.